लहराता है जब तिरंगा खेलों के मैदान में, तो जोश भरता है वतन के जवानों में। जीत की गूंज जब सरहद पार जाती है, हिंदुस्तान की ताकत दुनिया जान जाती है। आज गणतंत्र दिवस है। यह न केवल हमारे संविधान के लागू होने का उत्सव है, बल्कि अनुशासन, एकता और शारीरिक तथा मानसिक शक्ति का भी प्रतीक है, जो खेल भावना के मूल आधार है। साधारण शब्दों में कहें तो खेल और देश के बीच बड़ा गहरा नाता है। खेल जुड़ा है देश के संविधान से, देश के सम्मान से और देश के गौरव से। तो आइए इसी गर्व और ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन। उत्तरा जी, आपका स्वागत है।
धन्यवाद जी।
कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको और सभी श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत ने 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज पर कब्जा किया। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। पुरुष हॉकी इंडिया लीग के खिताबी मुकाबले में रांची रॉयल्स और वेदांता कलिंगा लांसर्स आमने सामने। भारत ने दोहा में वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ कंटेंडर में 4 स्वर्ण सहित कुल 10 पदक जीते। और खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के 6वें संस्करण का पहला चरण लेह में संपन्न। तो शुरुआत करते हैं T20 क्रिकेट से, जहां भारत ने कल गुवाहाटी में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया, और लगातार तीसरी जीत के बाद भारतीय टीम ने श्रृंखला पर कब्जा जमा लिया है।
अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव की तूफानी पारी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड के 154 रन का लक्ष्य महज 10 ओवर में हासिल कर लिया। लगातार तीसरा मैच जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेहमान टीम ने 9 विकेट खोकर 153 रन बनाए। भारतीय खेमे से जसप्रीत बुमराह ने 17 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि हार्दिक पांड्या और रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट निकाले। लक्ष्य के जवाब में भारत ने पहली ही गेंद पर संजू सैमसन का विकेट गंवा दिया। यहां से ईशान किशन ने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर 19 गेंदों में 53 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ तीसरे विकेट के लिए 40 गेंदों में 102 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम इंडिया को आसान जीत दिलाई। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए शक्ति सिंह।
भारतीय टीम ने अब जिस तरह से वापसी की है, विश्व कप के लिए अब 2 सप्ताह लगभग समय रह गया है, तो किस तरह का संदेश देख रही हैं आप इसे?
कि इससे अच्छा मेरे ख्याल से प्रिपरेशन हो नहीं सकता। आपके जो बड़े नाम हैं वो सब वापस फॉर्म में आ रहे हैं। लगातार ये सवाल उठ रहा था कि क्या सूर्य कुमार यादव बहुत लंबे टाइम से एक अच्छी पारी नहीं खेल पाए हैं, कप्तान होंगे टीम के तो किस तरह से चीजें चलेंगी। ईशान किशन ने वापसी कर ली है, ऑफ द फील्ड तिलक वर्मा क्लियर हो गए हैं टीम में आने के लिए, तो सारी चीजें ठीक होती जा रही हैं भारतीय टीम के, और बहुत ही सही टाइम पे सब एक साथ आ रहा है। बस एक चीज से थोड़ा सा टीम को संभल के रहने की जरूरत है कि ऐसा ना हो कि ये सीरीज अगर आप 3-0 की जगह 5-0 भी अगर जीत जाएं, तो कहीं ना कहीं ये चीज ना आए कि बहुत जल्दी पीक तो नहीं हो गया, 2 हफ्ते पहले आपने पीक आउट कर लिया है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप काफी लंबा जाएगा, कम से कम 1.5 महीने आपको खेलना है, काफी मैचेस खेलने हैं, और इस तरह से जब तैयारी होती है तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता है, आपके खिलाड़ी वापस आ रहे हैं फॉर्म में। T20 फॉर्मेट ऐसा है जिसमें आपके लिए फॉर्म और मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप जिस लय में आगे बढ़ रहे हैं, पर जैसा मैंने कहा ऐसा ना हो कि शायद 1 हफ्ता पहले पीक कर गए हैं और बिल्कुल बिजनेस एंड पे जाते जाते कोई ऐसा ना हो कि वो जो लॉ ऑफ एवरेजेस वाली चीज आती है वो आपके अगेंस्ट जानी शुरू हो जाए, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि भारतीय टीम खासकर की T20 में जिस लेवल पे इस वक्त है, मुकाबला अगर एक आध टीमों को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा दावेदार है नहीं जो भारतीय टीम को चैलेंज कर सकते हैं, पर फिर वही इस फॉर्मेट की सबसे बड़ी कमजोरी भी है कि किसी एक दिन किसी एक टीम का कोई एक प्लेयर अगर चल गया तो आपके पास कमबैक का मौका नहीं रहता है। तो थोड़ा सा टीम को बस ये सोच के चलना है कि ये सीरीज जीतना बहुत अच्छी बात है, फॉर्म में आना बहुत अच्छी बात है, पर इस चीज को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में लिया जाए, इसको ये मानना लिया जाए कि ये सीरीज हम जीते हैं तो हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है टीम के लिए।
बिल्कुल, अभी आपने थोड़ी देर पहले सूर्य कुमार यादव की वापसी की बात की थी, इस बीच उन्होंने तो वापसी कर ली, लेकिन एक जो अभी भी कमी खल रही है लोगों को, संजू सैमसन का जो प्रदर्शन दिख रहा है।
देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि ईशान किशन ने जो रन बनाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। संजू सैमसन एक अच्छे खिलाड़ी हैं, पर आपके पास जब आपके पास बैकअप हो, और क्योंकि ऋषभ पंत नहीं है तो ईशान किशन की वापसी बहुत जरूरी थी, वरना आपको फिर सोचना पड़ता है कि क्या ध्रुव जुरेल को ट्राई किया जाए, लास्ट मोमेंट पे चीजें बदली जाएं, जो तालमेल होता है टीम का वो बिगड़ने के पूरे चांसेस होते हैं। और संजू के साथ एक अच्छी चीज ये है कि अगर आप उनको एज विकेट कीपर ना खिलाएं तो वो आउटफील्ड में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और अगर आप उनको प्योरली एक बैट्समैन के तौर पे भी खिलाना चाहें तो आपके पास वो एक ऑप्शन बना रहता है, लेकिन वो तभी बनता है जब आपका दूसरा विकेट कीपर अच्छे फॉर्म में हो। इसीलिए ईशान किशन का वापस आना, एक पूरी टीम का जो तालमेल बनना है, जो बेस्ट पॉसिबल टीम उतरे, उसके लिए भी बहुत जरूरी था, और मुझे नहीं लगता इससे अच्छा टाइम हो सकता था ईशान किशन के लिए वापस आने का।
बिल्कुल, तो अभी जिस तरह से आपने बात की कि हम इसे भले ही अच्छे तैयारी के रूप में देख रहे हैं, लेकिन बस हमारी टीम को ये ध्यान रखना हो कि ये कॉन्फिडेंस कहीं बस ओवर कॉन्फिडेंस ना बन जाए और हमारी टीम लय बरकरार रखे।
बिल्कुल,
तो अब बात करते हैं WPL यानी कि महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग की, जो कि वडोदरा में खेला जा रहा है, और आज का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। इससे पहले RCB ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। तो टूर्नामेंट लीग मैच अब आखिरी चरण में है, और मुंबई का अब तक जो निरंतरता में अभाव देखने को मिला, और ऐसे में अगर लीग में शीर्ष पर चल रही टीम बेंगलुरु से जीत जाए वो तो कितना बेहद अहम होगा।
बहुत ज्यादा, और इन दोनों टीमों के बीच में जिस तरह से मुकाबला रहता है, एक ग्रज मैच हमेशा रहता है, और उस और पिछले कुछ समय से जिस तरह से RCB हावी रही है, तो मुंबई के लिए जीतना दोनों तरह से बहुत जरूरी है। अगर उनको फाइनल के लिए अपनी दावेदारी कायम रखनी है डिफेंडिंग चैंपियन होते हुए, तो भी जीत बहुत जरूरी है, और अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, क्योंकि इसके बाद 1 या 2 मैच ही बचे हैं आपके। अगर अब अगर ये आउट हारते हैं तो इनके पास वापसी के लिए बहुत ज्यादा मौके बचे नहीं हैं, जबकि RCB बहुत कंफर्टेबली बैठी हुई है। हालांकि पिछला मैच वो हारी थी, जो इस सीजन का पहला उनका लॉस था
जी,
तो थोड़ा सा हो सकता है कहीं ना कहीं कॉम्प्लेसेंसी हो, मैं ये नहीं कह रही हूं कि होगी, पर जब आपको पता हो कि एक आध मैच हार के आपकी टॉप पोजीशन पे कोई खतरा नहीं है, तो कई बार आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे उतर जाते हैं चीजों को ट्राई करने के लिए। लेकिन जिस तरह से अभी तक बैटिंग चल रही है मुंबई इंडियंस की, लग नहीं रहा कि वो ये सोच के आए हैं कि उनको कोई दिक्कत होने वाली है। आरसीबी की बॉलिंग उस तरह से उनको नहीं रोक पाई है, पर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि सामने जो बैटिंग कर रहे हैं
वो भी
नेटली सिवर ब्रांट और हेली मैथ्यूज टाइप की प्लेयर्स हैं, जिन्होंने इतनी बार अपने आप को अपने अपने देशों के लिए, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के लिए प्रूव किया हुआ है कि उनको हल्के में आंकना बहुत गलत होता। तो दिलचस्प मुकाबला है, देखना पड़ेगा किस तरह जाता है। और स्मृति मंधना ने विकेट टॉस के टाइम बोला ही था कि जिस तरह की वहां पे पिच है और जिस तरह के कंडीशंस हैं, उसमें एक टारगेट सामने होना हमेशा हेल्प करता है, तो ऐसा ना हो कि वो टारगेट सेट करने के चक्कर में इतना ऊंचा टारगेट चला जाए मुंबई का कि आप चेज ना कर पाए।
बिल्कुल, तो आज का मैच दिलचस्प है, और कल का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच खेला जाएगा। इस बीच क्रिकेट से एक बुरी खबर हमारे पास है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का कल 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत में क्रिकेट मार्केटिंग के एक नए युग की शुरुआत करने वाले प्रमुख व्यक्ति बिंद्रा ने वर्ष 1993 से 1996 तक BCCI अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। और अब बात करते हैं हॉकी इंडिया लीग की, जो कि भुवनेश्वर में खेला जा रहा है, और आज लीग का फाइनल मैच है जो कि रांची रॉयल्स एंड वेदांता कलिंगा लांसर्स के बीच खेला जा रहा है। हाफ टाइम तक लांसर्स की टीम ने 3-1 से बढ़त हासिल कर ली थी, और आज ही तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में हैदराबाद तूफान्स ने HILGC को 4-2 से हराया और तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया। तो जो इस तरह के लीग मैचेस हैं, हम हमेशा हॉकी में बात करते हैं पेनाल्टी कॉर्नर्स में हमारी टीम कहीं ना कहीं कमजोर रह जाती है, तो जो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ मिलकर के क्या किस तरह की इनकी तैयारी होगी?
देखिए, पिछली बार जब HIL हुई थी तो उसका फायदा हम ऑलमोस्ट पेरिस तक हमने लिया है, क्योंकि जो कोर टीम थी हमारी वो उसी टाइम से शुरू हुई थी, काफी जूनियर खिलाड़ी थे जो अब टीम के सीनियर हो गए हैं, और उस दौर में उनको जितना फायदा हुआ था उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो उम्मीद यही है कि पिछले सीजन भी हुआ है, इस सीजन भी जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, खासकर की जो जूनियर टीम से आ रहे हैं, उनको बहुत फायदा होगा सीखने का, क्योंकि जितने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं वो जिस लेवल के खिलाड़ी हैं, अगर आप उनसे सिर्फ एक महीना पूरा उनके साथ सिर्फ खेल के बारे में ना भी बात करें, बाकी चीजों पे भी जब बात करें, तो आपका पूरा नजरिया बदल जाता है, आपका खेल को, अपने आप को, दुनिया को देखने का की एक नई समझ आती है। और जो बाकी के खिलाड़ी हैं, स्पेशली जो बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया से जिस तरह जो खिलाड़ी आए हैं, वो जिस लेवल के खिलाड़ी हैं वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि सिर्फ उनके साथ ग्राउंड पे खेलना, आप जो यंगस्टर्स हैं जो इस वक्त 18-19 साल के हैं, और इस लीग में तो एक 14 साल के भी खिलाड़ी हैं, तो उनके लिए शायद ये एक ड्रीम कम ट्रू ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कितना लेते हैं इन खिलाड़ियों से, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी हैं ये अपनी नॉलेज शेयर करने में बहुत ओपन रहते हैं। मैं शायद ही किसी ऐसे फॉरेन प्लेयर को जानती हूं जो आपके साथ चीजें अपनी शेयर ना करना चाहे। तो भारतीय टीम के लिहाज से, भारतीय टीम के फ्यूचर के लिहाज से, यंग प्लेयर्स के लिहाज से, मुझे लगता है ये लीग बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, बड़ा अवसर है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका फायदा हॉकी इंडिया टीम को देखने को मिलेगा। भारतीय खिलाड़ियों ने दोहा में आयोजित की गई वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ कंटेंडर प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण सहित कुल 10 पदक जीते, जिसमें लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में अहोना रे का शीर्ष स्थान हासिल रहा। लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में भारत ने तीनों पदक हासिल किए। अहोना के बाद अंकोलिका चक्रवर्ती ने दूसरे और नैशा रिवास्कर ने तीसरे स्थान पर कब्जा जमाया। अंकोलिका और नैशा ने लड़कियों के अंडर 15 डबल्स में भी रजत पदक हासिल किया। डबल्स और मिक्स्ड स्पर्धाओं में भी भारत का स्वर्ण पदक जीतने का सिलसिला जारी रहा। आकाश राजवेलु और ईशान चट्टोपाध्याय ने लड़कों के अंडर 15 डबल्स में, जबकि दिव्यांशी भौमिक और पीबी अभिनंद की जोड़ी ने अंडर 19 मिक्स डबल्स में स्वर्ण पदक जीते। अंकोलिका और आदित्य दास ने भी अंडर 15 मिक्स डबल्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किए। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
तो 23 से 25 जनवरी तक खेले गए इस टूर्नामेंट में भारत के पदकों की संख्या इसके शानदार प्रदर्शन को दर्शाता है। उधर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के यूकी भांबरी और स्वीडन के आंद्रे गोरांसन की जोड़ी की हार के साथ ही साल के पहले ग्रैंड स्लैम में भारत का सफर भी समाप्त हो गया। भारतीय स्वीडिश जोड़ी को ब्राजीलियन की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के 6ठे संस्करण का पहला चरण आज गणतंत्र दिवस पर लेह में संपन्न हुआ।
The concluding ceremony of the Khelo India Winter Games 2026 was held at the NDS Stadium Leh today amid a packed crowd, Ladakhi songs playing and people dancing and cheering for their team. In the finals under men's category of ice hockey competition, Army beat Chandigarh with stunning score of 3-2. An exciting finish to the skating event with short track mixed relay 2000 meter, Maharashtra won the gold, while as Ladakh won silver and Karnataka bronze. For SportsCan, Rigzinangmo from Leh Ladakh.
देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते जा रहा है, और भारत में आइस हॉकी का खेल भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और भारतीय सेना ने आज अपने अनुभव प्रदर्शन से दिखलाया है कि किस तरीके से उन्होंने अपने अनुभव के साथ साथ इस देश को भी आगे रक्षा की है।
तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।